हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का मैं हृदय से आभार करता हूँ और आप सब आप श्रीमद् भागवत के भागवत सत्र में आप कथा सुनेंगे, इसके लिए विशेष विशेष धन्यवाद आपको। श्रीमद् भागवत के खंड 6 से अध्याय 4 और श्लोक 18 से 23 पे आज हम सब मिलकर के आपस में चर्चा करेंगे। आवाज आ रही सबको? तो 18 से 23 जो श्लोक है इसको एक बार हम पढ़ते हैं, 18 से 22 तक आप लोग सुनिए और 23 पे फिर हम लोग चर्चा करेंगे और 23 को आप लोग भी दोहराएंगे।
यथा सर्सर्ज भूतानि दक्षो दुहित वत्सल रेतसा मनसा चैव तन्ममावित श्रीणु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृपया अत्यंत ध्यानपूर्वक मुझसे सुने कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहिल थे, अपने वीर्य तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। द्रोहित वत्सल शब्द सूचित करता है कि सारी प्रजा दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इससे प्रतीत होता है कि दक्ष के कोई पुत्र न था। मन सैवा सृजत पूर्व प्रजापतिर महाप्रजा देवासुर मनुष्य दीनब स्थल जल कैसह। प्रजापति ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों इत्यादि को उत्पन्न किया। तम बृहित मालोक्य प्रजा सर्ग प्रजापति विंध्यापाद अनुप्रज्य षोड़श दुष्करम तप। किंतु जब प्रजापति ने देखा कि वे ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट एक पर्वत पर गए और वहाँ पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। तत्राघर्तमर्षणम नाम तीर्थ पाप हरम परम उपदेश सिद्धासुतनुसमनम तपसो सोय सुधिरम। उस पर्वत के निकट अघम घर्षण नामक एक तीर्थस्थल था। वहाँ पर प्रजापति दक्ष ने सारे कर्मकांड संपन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या में संलग्न होकर उन्हें संतुष्ट किया। अस्तोसी सद शगुवेन भगवत एन्द मधोक्षजम तुभ्यम तदा विभिष्यामी कस्या तुष्यथा हरि। हे राजा, अब मैं आपसे हंस गुहे नामक स्थितियों की पूरी व्याख्या करूँगा जिन्हें दक्ष ने भगवान को अर्पित की, और मैं बताऊंगा कि किस तरह उन स्थितियों से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। यह समझने की बात है कि हंस गुहे स्थितियों की रचना दक्ष द्वारा नहीं हुई थी, अपितु वे वैदिक वाडम्य में पहले से विद्यमान थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। अब आज जिस श्लोक पे हम चर्चा करेंगे वह इस प्रकार है। श्री प्रजापति रुवाच
नमः पराया वितनानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्ट धामने गुणतत्व बुद्धि निर्वित्यमानाय दधे स्वयंभुवे।
उवाच प्रजापति दक्ष ने कहा, नमः सादर नमस्कार पराय परम ब्रह्म को, अवितथस सही अनुभूतये उसको जिसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी अनुभूति कराती है, गुणत्रय प्रकृति के तीनों गुणों का आभास प्रकट होने वाले जीवों का निमित्त इस भौतिक शक्ति का, बंधवे नियंता को अदृष्ट धाम ने जो अपने धाम में देखे नहीं जाते, गुण तत्व बुद्धि भी बद्ध जीवों द्वारा जिनकी मंद बुद्धि बताती है कि असली सत्य प्रकृति के तीन गुणों की अभिव्यक्ति में पाया जाता है। निवृत्त मानया जो सारे भौतिक पापों तथा गणनाओं को पार कर चुका हो, दधे अर्पित करता हूँ स्वयं हुए बिना कारण के प्रकट होने वाले भगवान को। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। प्रजापति दक्ष ने कहा, भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे हैं, उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। जिन बद्ध आत्माओं ने इस भौतिक जगत को सर्वस्व समझ रखा है वे उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि वे व्यवहारिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट हैं, वे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर भगवान की दिव्य स्थिति की व्याख्या हुई है। वे उन बद्ध आत्माओं द्वारा नहीं देखे जा सकते जो भौतिक दृष्टिकोण के आदि हैं और जो यह नहीं समझ सकते कि भगवान अपने उस धाम में विद्यमान रहते हैं जो उनकी दृष्टि से परे है। भले ही कोई भक्तिवादी भौतिकवादी व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं की गिनती कर ले किंतु फिर भी वह भगवान को समझ नहीं सकता। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:34 की पुष्टि की गई है, पंथास्तु कोटि सतवसर गम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगमानम सोड़ प्रदसिन प्रचिंत तत्वे गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। बद्ध आत्माएं करोड़ों वर्षों तक अपनी मानसिक चिंतन पर परक विधियों मीमांसा से मन या वायु की गति से यात्रा करते हुए भगवान को समझने का प्रयास क्यों न करें, फिर भी परम ब्रह्म उनके लिए अचिंत्य बने रहेंगे क्योंकि
भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के असीम अस्तित्व की लंबाई तथा चौड़ाई को नहीं माप सकता। यदि परम ब्रह्म माप से परे है तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि कोई इसकी अनुभूति किस तरह करे। इसका उत्तर यहाँ पर स्वयं हुए शब्द द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई उन्हें समझे या न समझे, फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में विद्यमान रहते हैं। ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथ विन्तं तं सजीवं साधुवितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावान्तिश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सर्वसती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हम गुरु महाराज और यहाँ आप सभी बैठे वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि इस पे हम जो भी अनुभव लिया है हमने उसके विषय में चर्चा करें, ताकि उसको आप लोगों को भी उसका कुछ लाभ प्राप्त हो। तो इस समय हम यहाँ श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, कृष्ण बलराम जी और गौर निताई जी के प्रांगण में बैठे हैं, और श्रीमद् भागवत जो अमल पुराण है, श्रीमद् भागवत अमल पुराण यानी अमल का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना में आप देखेंगे कि सिर्फ भगवान का धाम छोड़ करके किसी भी ऐसे स्थान, कोई ऐसा स्थान नहीं जिसमें मल ना हो, यानी जिसमें कोई ना कोई गंदगी ना हो। और ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर इस बहुत ही गंभीर विषय को सुनने और समझने के लिए बैठे हैं। श्रीमद् भागवत जो अमल पुराण के रूप में है, आप लोगों में से कितने लोग, ये जब से खंड 6 शुरू हुआ है, कितने लोग क्लास में डेली है, यहाँ पर रोज आते हैं? मेरा पूछने का अर्थ ये है कि ये थोड़ा सा इसका मैं रिफरेंस कर दूं कि जो श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी ने 12 खंडों में दिया है हमें, जिसकी 18 बुक्स है और 18,000 श्लोक हैं इसमें जो है ये श्रीमद् भागवत 6 स्कंद पे हम चर्चा कर रहे हैं, और जो 6 स्कंद है इसका पूरा अध्ययन यदि आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 स्कंद साधकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत विशेष है। जैसा कि आप इसमें शुरू में अजामिल की कथा, अजामिल का व्यवहार, अजामिल का आचरण, फिर अजामिल और चित्रकेतु के विषय में वार्तालाप, यमदूतों का आना, विष्णु दूतों का आना, फिर वहाँ पे चर्चा करना, इसके आगे फिर वृत्तासुर और वृत्तासुर का भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना, भगवान को पूरी तरह से समर्पित होना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लेकिन यहाँ पे इस खंड के अंदर जगह जगह पे बहुत ही हमें कौशन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश है, और सावधानी पूर्वक गंभीरता पूर्वक हम साधकों को कैसे अपनी साधना को
अभ्यास में लाना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए साधन भक्ति को, उसके बारे में विशेष करके प्रभुपाद जी ने जोर दिया है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के इस विशेष करके 23 नंबर श्लोक जो अभी मैंने पढ़ा, इसको एक बार बहुत ध्यान से फिर से सुनिए, क्योंकि इस ये जो है श्लोक दक्ष प्रजापति के द्वारा की गई भगवान से प्रार्थना है।
नमः परायण वित्तानुभूतये गुणत्रयभासा निमित्त बंधवे अदृष्ट धामने गुण तत्व बुद्धि निवृत्त मानाय दधे स्वयंभे।
प्रार्थना, हम लगभग कोई भी भगवान के पास जब जाते हैं तो एक कोई न कोई प्रार्थना जरूर करते हैं, अपने स्थिति अपनी अपने अपने जैसे हमारे मन में जैसी हमारे ज्ञान है, जो हमारा ज्ञान का स्तर है उस हिसाब से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पे दक्ष जो है, दक्ष भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और ये जो प्रार्थना है ये एक्चुअली दक्ष प्रजापति इनका नाम है, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने इन्हें एक सृष्टि की रचना में संतान उत्पन्न करने के लिए भेजा है, तो संतान उत्पन्न करने के लिए इनको कुछ विशेष गुण दिया है भगवान ने। यहां पर दक्ष जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ चाहते हैं, और हम सभी जीव और खास करके हम सब भक्त लोग भी, और इवन प्रत्येक जीव जो भी भगवान को, भगवान की सत्ता को महसूस करता है, जो भगवान को जानता है कि वो हमारे सब कुछ हैं, नियंता हैं, तो निश्चित रूप से वो हमेशा जाने अनजाने में वो 24 घंटे भगवान से प्रार्थना करता ही करता है। तो प्रार्थना जो है यहाँ पे दक्ष प्रजापति जो कर रहे हैं भगवान से कि हमें संतान उत्पन्न करना है, तो संतान ये 2-4-10 नहीं, उनको कई करोड़ों संतान उत्पन्न करनी है। वो चाहते हैं कि ये पूरी सृष्टि बच्चों से भर जाए। तो आपसे हम प्रश्न करना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या ये प्रार्थना जो है दक्ष जो कर रहे हैं भगवान से, ये कि सारी पृथ्वी बच्चों से भर जाए और हमें संतान उत्पत्ति करने की ताकत दीजिए, तो ये अच्छी बात है? आप बताइए, अच्छी बात है ये? हाँ, यस, बहुत अच्छा। प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि चूंकि ये सेवा भगवान ने उनको निर्धारित की है, भगवान ने उनको दिया है, और उनको दक्ष यानी वो पूरी तरह से वो प्रशिक्षित हैं, दक्ष हैं करोड़ों संतान उत्पन्न करने में। उसमें जो है वो चाहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर तमाम बच्चे हों, बहुत बच्चे हों, और ऐसी तमाम बच्चे अर्थात इस पृथ्वी पर तमाम ऐसी आत्माएं यहाँ पर आएं जो भगवान की भक्ति करें और भगवान की भक्ति को और भक्ति की परिकाष्ठा को प्राप्त करके वो जो है यहाँ से 14 लोकों तक, यानी भगवान का लोक छोड़ करके जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं है, जीवन स्वास्थ्य जीवन जो है वहाँ पे शाश्वत है, उस स्थान को छोड़ करके जितने भी स्थान में कलमस हैं, गंदगी है, मल है, उसको जो है ये स्वच्छ करें, ये पर्पज है दक्ष प्रजापति का भगवान से प्रार्थना करके इन करोड़ों बच्चों को उत्पन्न करने के लिए। तो वो ये जो है इसके लिए हंस गुह्य प्रार्थना करते हैं, हंस गुह्य प्रार्थना करते हैं।
हंस गए, यानी वो हंस गए प्रार्थना एक्चुअली देखा जाए तो इसमें विश्वनाथ चक्रधरी ठाकुर की कमेंट्री है। विश्वनाथ चक्रधरी ठाकुर कहते हैं कि ये जो प्रार्थनाएं हैं ये ऑलरेडी ऋग्वेद में की जा चुकी हैं। ऋग्वेद के विभिन्न प्रकरणों में ये तमाम प्रार्थनाएं अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेंगी। उसी से ये प्रार्थना ली गई है और इस प्रार्थना को यहाँ पर दक्ष प्रजापति, दक्ष यानी जो दक्ष हैं, अब प्रजापति यानी जितने भी ये समाज में बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना है और ऐसे बच्चे पैदा करना है जो है इस सृष्टि के निर्माण में अच्छे बुद्धिमान और गौरवशाली हों, ताकि वो जो है जीवों के जो कलमस हैं, गंदगी है, उसको ये साफ करें और साफ करके उन आत्माओं को पवित्र करें और वो आत्माएं पुनः भगवान की सेवा में 100% लग जाएं। इसका उद्देश्य यही है जिसे हंस गुहे प्रार्थना कहते हैं। हंस गुहे प्रार्थना यानी परमहंस। परमहंस की व्याख्या तो आप सभी लोग समझते होंगे। परमहंस का अर्थ जो है, जैसे हम देखते हैं कि परमहंस यानी कौन, परमहंस का अर्थ बेसिकली ये होता है कि जैसे दूध और पानी को अलग करना। परमहंस एक पक्षी है, एक्चुअली उसका दृष्टांत है ये। परमहंस पक्षी की सबसे बड़ी उसकी गुण ये है कि अगर आप एक बाल्टी पानी में एक बूंद दूध डाल दीजिए तो पानी को छोड़ देगा, दूध को निकाल लेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त को इस स्तर तक बुद्धिमान होना चाहिए भक्ति करने के लिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। और इंटेलिजेंट होकर होते हुए बहुत सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति को करना चाहिए। परमहंस यानी जो अनाथ और नाथ, आत्मा और शरीर, यानी ये स्थूल शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा है और परमहंस वो व्यक्ति है जो आत्मा को देखता है। आप जितने भी शुद्ध संत हैं, शुद्ध गुरु महाराज हैं, अपने जितने भी महाराज लोग हैं, ये जो है इस चीज का डिफ्रेंसिएशन करना जानते हैं। ये सभी के हृदय में जो है आत्मा का दर्शन करते हैं और हम लोग ये चीज नहीं कर पाते। हम लोग वाय स्थिति के रूप में लोगों के भौतिक शरीर को देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये मनुष्य कैसा है, ये माताजी कैसे हैं, हम कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। इसमें इस श्लोक में देखिए बहुत अच्छा, पराय नमः पराय वित्तानुभूतये। आपको इन सब बातों का अनुभव करना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का दर्शन कैसे करें, हम आत्मा को किस तरह से हम पहचाने कि आत्मा हमारे अंदर है। अब इसी के ऊपर देखिए बात आएगी आगे चल करके कि सेवा और भोग में क्या अंतर है, भोग क्या है, सेवा क्या है, माया क्या है, अध्यात्म क्या है। तो जब तक आप इस स्तर पे नहीं आओगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं इस समय। तो इसलिए हमें एटलीस्ट जो हमारे गुरु महाराज के माध्यम से जो एक सिस्टम बताया गया है वैष्णव सिद्धांत के अंदर, भगवान के नाम का जप करना, चार नियम का पालन करना, मंगल आरती के समय उठना, ये सब बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है। ये साधना भक्ति है। इस साधना भक्ति के द्वारा हम इन बातों का अनुभव कर सकते हैं और जब आपको ये अनुभव वास्तविक रूप में आपके अंदर आएगा तब आप जो है ये समझने की क्षमता रखेंगे कि भोग क्या है और सेवा क्या है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, अध्यात्म क्या है, भौतिक क्या है। तो इस स्तर पर आने के लिए ये उदाहरण मैंने अभी बताया आपको। और प्रार्थना जो है, जैसे यहां पे दक्ष महाराज कर रहे हैं प्रार्थना भगवान से, वो कुछ मांग रहे हैं। किसी से कोई वस्तु यदि मांगनी है तो आप सीधा ही जाकर के उससे बात डायरेक्ट ये नहीं कहते हो कि मुझे ये दे दो, उसकी कुछ प्रशंसा करनी पड़ती है, कुछ ग्लोरिफिकेशन करना पड़ता है, ये नियम है। भगवान से भी यदि हमें कुछ मांगना है तो हमें उनसे पहले उनका कुछ गुणानुवाद करना है, सीधा जाकर के उनसे मांगना नहीं कि हमें ये दे दो। क्यों दे देंगे वो, हमारे नौकर तो हैं नहीं हमें दे देंगे, और भगवान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम अपने व्यवहार जगत में भी देखते हैं कि किसी से हम डायरेक्ट रास्ते चलते किसी से कोई चीज मांग नहीं सकते। अब मांगेंगे तो उसका क्या परिणाम होता है, आपको भिखारी के स्तर पे आना पड़ेगा। अभी भिखारी का भी दृष्टांत मैं आगे बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर अपने विषय वस्तु में जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में शुरू में देखिए बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जिनम, वो यहाँ भगवान से जो है यहाँ पे भी प्रार्थना कर, पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे, उसके बाद में फिर नामना अनाकारी बहुधा, फिर यहाँ तक आकर के उसके बाद फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्तों के लिए ये एप्लीकेबल है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय, हे भगवान आप हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए और हमारे अंदर इस तरह की कोई कामना न हो और हमें आपके दर्शन की प्राप्ति हो। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे अपना दर्शन दो। तो आपको दर्शन दो तो भगवान से हम कहते तो हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा अनुभव होता है कि भगवान हमें दर्शन दिए हैं या देंगे या दे सकते हैं? आप सभी यहाँ जो बैठे हैं भक्त, कोई कह सकते हैं इस तरह से कि हमें कभी भगवान के दर्शन का अनुभव होता है? एक्चुअली ये वन टू वन इंटरेक्शन करने वाला श्लोक है, तो मैं भी आपसे इस भावना से पूछना चाहूंगा कि यदि आप बताएंगे तो हमारा भी कुछ प्यूरिफिकेशन होगा और यहाँ बैठे लोगों की भी प्यूरिफिकेशन होंगे। क्योंकि जब हम बहुत तीव्रता से भगवान के नाम का जप करते हैं, चार नियम का पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, 64 माला जप करते हैं, और बहुत अच्छा ये इस समय चल रहा है चातुर्मास का समय, आज चातुर्मास का दूसरा दिन है। कल मधुवा प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमें इंद्रिय दमन, इंद्रिय निग्रह करना है, यानी हमें अपने हर चीजों पे कंट्रोल करके साधना को मजबूत करना है। तो उसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम जो है 16 माला 64 माला बहुत तीव्रता से करते हैं, सुबह मंगल आरती में उठ करके हम भगवान के दर्शन लेते हैं। तो दर्शन लेने के साथ साथ जब हम ये अपना भगवान के नाम का जप करते हैं तो क्या हमारे अंदर में क्या अनुभूति होती है, क्या अनुभव होता है? प्रभु जी में से कोई भक्ति यदि बताना चाहे तो बता सकते हैं अभी, किसी को कोई अगर विशेष कोई अनुभूति हो तो बता सकते हैं, शर्म की कोई बात नहीं है, इससे सबका शुद्धिकरण होगा। तो यस माता जी प्लीज, हाँ बताएं आप, पता ऐसे बताएं, मैं बोल दूंगा फिर से बोलिए आप। भागवत गीता, बिल्कुल ठीक है। और कोई माता जी बताना चाहेंगे? अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, हम रोज सुबह उठ करके सारे नियमों को, जो नियम हमें गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है उसे हम करते हैं, तो हमें क्या अनुभव होता है ये समझने की बात है, बहुत गहराई की बात है, बहुत गंभीर विषय है ये। और यदि हम इसका सही तरीके से शास्त्र के अनुसार यदि हमें ज्ञान नहीं होता है तो ये साधना ये तपस्या बेकार है। सबसे पहले प्रश्न यहां ये उठता है कि क्या कृपा हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। कृपा हमें मिल रही है, यस प्रभु जी बोलिए। ठीक ठीक प्रभु जी, अब सुनिए। तो इसके आगे जो है कृपा, हमें ये अनुभव करने वाली बात है कि हमें कृपा मिल रही है कि नहीं है। अभी देखिए, कुछ समय पहले जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा थी। भगवान हमेशा अपने मंदिर में रहते हैं, पर चैतन्य जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने विचार किया कि इस कलियुग के प्राणियों की स्थिति ये है कि ये अनुभूति करने भी असमर्थ हैं, तो कोई बात नहीं है, हम चलो बाहर जाकर उनको दर्शन दे के आएंगे। ये भगवान की विशेष कृपा। भगवान के जो छह ऐश्वर्य छह गुण हैं विशेष, उसमें से एक ऐश्वर्य है ये परम दयालु हैं। तो इस दयालुता की वजह से वो जो है एक दिन बाहर निकलते हैं और सारे जीवों को अपनी कृपा देते हैं, कोई इसे माने या न माने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। लेकिन भक्तों को, चूंकि हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, हमें तो विशेष रूप से वो संसारी या भौतिक व्यक्तियों की तरह नहीं, भक्त के होने के नाते हमें ये अनुभव होना चाहिए कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है या नहीं मिल रही, इसकी हमारे पास में प्रमाण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अदरवाइज आप भक्ति में उन्नति कैसे करोगे? तो उसी के विषय में हम यहाँ आगे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए, ऐसे तो तमाम उदाहरण है, लेकिन द्रौपदी ने एक बार सिर्फ भगवान को उस परिस्थिति में जब पुकारा, हे गोविंद, तुरंत भगवान वहां पर आ गए और भगवान ने सारी व्यवस्था की। प्रहलाद महाराज को देखिए, उन्होंने एक बार बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर के वो कूद गए। यदि हम निष्ठापूर्वक और अच्छी तरह से यदि भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और सारी साधना बहुत सुंदर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मंगल आरती भी आ रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, जो भी हमारे गुरु महाराज ने हमें आज्ञा दी है उसके हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, तो इसको करते हुए क्या हमें उस कृपा का अनुभव हो रहा है? जैसा कि इसी श्लोक में आ रहा है, इसकी अनुभूति हो रही है हमें? अभी अभी एक मिनट, थोड़ा सा एक सत्र पूरा हो जाए फिर मैं बताता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें इसकी अनुभूति कैसे होगी और किस प्रकार से होगी, इसकी अनुभूति होना अति अनिवार्य है। और अनुभूति नहीं अगर होगी तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि एक दिन आप पागल हो जाएंगे। बुरा मत मानना ये बात। मैंने तमाम जगह पे देखा है, कभी कभी भक्त के मन में ये विचार आता है कि आज से मैं 3 लाख नाम जप करूंगा, सुबह से लेकर के रात तक हरिदास ठाकुर की तरह जप करूंगा, या हमें जो है भक्तों के बीच में डिस्टरबेंस होता है तो कोई बात नहीं, हम अकेले, हमारे बहुत से ब्रह्मचारी बाहर रहते हैं, साधना साधना तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो मंदिर प्रांगण से बाहर हैं, उसके वजह जो भी हो। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें इनके साथ नहीं रहना, उनके साथ नहीं रहना है। भक्ति ऐसी चीज है, जब तक आप संगठन में नहीं होंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगे, तब तक आपकी भक्ति रंच मात्र भी नहीं आएगी। तो उसमें आप देखेंगे इस प्रकार से कि हम साधना भक्ति अपनी सब तरह से कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी इसकी अनुभूति नहीं हो रही है। हम क्या द्रौपदी की तरह एक बार बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे? और एक निष्ठ भक्ति, पूरी तरह से करने के बाद में भी जो है हमें इसका कोई अनुभव नहीं है और हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रहलाद महाराज की तरह यदि हमें कोई फेंक देगा तो हम गिरेंगे, हमें चोट नहीं लगेगा या मरेंगे नहीं। और कभी कभी भक्त लोग इस तरह से साधना भक्ति करते करते इस स्थिति पे भी पहुंच जाते हैं कि ऐसी भी क्रिया करने के और भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, सौरभ मुनि ने बहुत साल तक तपस्या की, विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तपस्या किया। आप सब भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि आज इस बात को आप अपने दिल दिमाग में ग्रहण करके जाएं और इस पे चिंतन करें कि हम जो है, मान लीजिए कि आप सारे क्राइटेरिया को एक निष्ठ भक्ति आप कर रहे हैं, सभी प्रकार से संतुष्टि पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या इन सब बातों के विश्वास है? विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तपस्या किया मात्र यही जानने के लिए कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान को मिलना है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, हम दर्शन देंगे और वो हम आपका टेस्ट लेंगे। तो आप सबको पता होगा भगवान ने क्या टेस्ट लिया। प्रभु जी क्या टेस्ट लिया भगवान ने? भगवान ने तुरंत टेस्ट लिया, मेनका को भेज दिया और सारी तपस्या वहीं धरी की धरी रह गई। और प्रभु जी, मैं आपके सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, प्रभु जी हमारे सब जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं यहाँ पे, खास करके गृहस्थ हैं, मैं भी गृहस्थ हूं, हमारे साथ भी मेनका है, तो ये बात समझ, एक्चुअली ये एक दृष्ट है, लेकिन यहां तो देखिए हकीकत में सौरभी मुनि ने इतने साल तक तपस्या की, खाली एक मछली को स्थिति को देख करके तुरंत उन्हें पद भ्रष्ट हो गए। ऐसे हमारे बहुत से ब्रह्मचारी हैं जो बहुत शुरुआत में तो बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, बहुत एकनिष्ठ भक्ति करते हैं, सारी भक्ति के साधनों का पालन करते हैं, पर धीरे धीरे उनको क्या होता है कि उनके भी जीवन में कभी एक बार मेनका आ जाती है और उनका जो है फॉल डाउन हो जाता है। तो ब्रह्मचारियों के जीवन में मेनका के आने से उनका फॉल डाउन होता है, ये तो बहुत प्रमाण है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बार अनुभव गया, सब लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा होगा, इस कलयुग में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ब्रह्मचारी बनना बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन तपस्या है, पर इसके साथ साथ गृहस्थों में फॉल डाउन कैसे होता है, गृहस्थ लोग कैसे गिरते हैं, उनके साथ तो पत्नी है उनकी, फिर गृहस्थ लोग कैसे अपने पद से भ्रमित होते हैं, उनके अंदर क्या समस्या आती है जो फॉल डाउन होते हैं, ये बहुत विचार करने वाली बात है। उनके साथ में समस्या ये आती है कि वो कुछ समय तक शुरुआत के दिनों में भक्ति करते हैं, बाद में फिर जो है वो इसमें देखिए बहुत अच्छा, गुण अत्र भाषा निमित्त बंधवे, गुण अत्र भाषा निमित्त बंधवे, ये जो प्रकृति की माया शक्ति है, तीन गुणों की शक्ति है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, तो रजोगुण में व्यक्ति सब कुछ लेने की आशा करता है, तमोगुण में वो डिस्ट्रॉय करने की, नुकसान करने की सोचता है, और सतोगुण में सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है जो कुछ है, ठीक है हमें किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी भक्ति करूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या होता है कि चूंकि भक्तों के संपर्क में नहीं होता है तो धीरे धीरे वो जो है उसका मन विचलित होने लगता है, दिमाग बहुत तेजी से बाहर जाता है और वो सोचता है कि चलो आज अखबार पढ़ेंगे, पेपर देखेंगे या कहीं बाहर और किसी काम में लग जाएंगे, समय बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा करूंगा इसको, पूरे प्रकरण को, और मैं चाहूंगा कि इस विषय में अगर कोई पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहेंगे तो आपस में समूह में हम लोग कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि गृहस्थ लोगों का फॉल डाउन, वो फिर जो है भक्ति पद से नीचे उतर करके दूसरे दूसरे कार्यों में लग जाते हैं और यहां तक कि इस स्थिति में आ जाते हैं कि फिर उनको जो है यहां पे अच्छा नहीं लगता, वो मंदिर आना बंद कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें ये अनुभूति कैसे होगी, ये कैसे हमें अपने एनालिसिस, हम जो भगवान के साधन भक्ति कर रहे हैं, इस साधना में हमें टेस्ट कैसे आएगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हम भक्ति सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भगवान के दर्शन हमें होंगे या नहीं होंगे, और भगवान के दर्शन का अर्थ क्या है। हम एक्चुअली देखा जाए तो आप एनालिसिस करके देख लीजिए, हम सिर्फ माया का दर्शन करते हैं क्योंकि माया की शक्ति से हम प्रभावित हैं, और माया की शक्ति का प्रभाव से इतना ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर रहता है कि हम, हमारी चांटिंग होती है, हम अपना माला जप करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, पर सब कॉन्शियसली यानी माइंड से हम जो है कहीं और रहते हैं, और माइंड से जब हम कहीं और रहते हैं तो हम सिर्फ जो है इंस्ट्रक्शन के अंदर, चूंकि हमें निर्देश है, हमने दीक्षा लिया हुआ है और भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं, तो हम अपनी माला तो घुमा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कुछ और चल रहा है। इस चीज को संतुलित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमारा कॉन्सियसनेस और सब कॉन्सियसनेस, यानी जो चेतना शक्ति है और जो अविचेतना है यानी सब कॉन्सियस है, दोनों को कैसे हम जो है एकत्रित करके उसको ऑर्गेनाइज करें और किस तरीके से हम जो है इसका अनुभव करें। यहाँ पे मेन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए कि साधना भक्ति आप करोड़ों जन्मों तक करते रहो, इसी जन्म में नहीं करोड़ों जन्मों तक आप करते रहो, आपको न तो भगवान का दर्शन होगा न ही भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। यहाँ पे बहुत सुंदर एक श्लोक है, बहु जन्म जपी करे श्रवण कीर्तन, बहु जन्म जपी करे, बहुत जन्मों तक आप करोड़ों जन्मों तक साधना भक्ति साधना से करते रहो लेकिन आपको उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। ये आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतना सब कुछ कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिलने वाला इससे, ऐसा क्यों। अब इसके आगे देखिए, ये श्लोक में ही कह रहे हैं, अदृष्ट धाम ने गुणवत्त विद्धि निवृत्त माना है दधे स्वयं भुए। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकट होता हूं, वास्तविक रूप में विष्णु या कृष्ण जो है किसी भी साधना भक्ति से किसी निर्धारित स्थिति से बिल्कुल नहीं हमारे सामने प्रकट होने वाले, और न ही अपनी कृपा देना। ऑफकोर्स हमें थोड़ी बहुत कृपा मिल सकती है, जैसे अभी मैंने बताया कि भगवान स्वयं बाहर निकल के सबको कृपा दे रहे हैं, सूरज भगवान निकलते हैं तो सबको रोशनी देते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप अपना विंडो बंद कर रखे हैं कि या ओपन रखे हैं, इतना तो कार्य आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्त होने के नाते यहाँ पे ये एनालिसिस, ये सूक्ष्म दर्शन बहुत जरूरी है कि हम नित्य यदि भगवान के श्रवण कीर्तन भागवत सब कुछ कर रहे हैं, साधना भक्ति को पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें कोई भी इस प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है, अदृष्ट धाम ने न ही अनुभूति हो रही, गुणवत्त बुद्धि भी निर्वृत्त माने, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं प्रकट हूंगा। तो प्रश्न आप ये उठता है कि यदि मैं स्वयं प्रकट हूंगा, स्वयं आपको दर्शन दूंगा, तो आपको साधना करने की क्या आवश्यकता है, क्यों साधना कर रहे हैं हम, फिर साधना करने की आवश्यकता ही क्या है हमें। तो भक्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि साधना से हमें दो प्रकार की चीजें खाली में दो स्थिति हमारी बनती है और बनेगी भविष्य में, यदि आप इसमें सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। साधना भक्ति करने से आपको संसार के प्रति धीरे धीरे विरक्ति पैदा होगी। जब आप अच्छी तरह से साधना करोगे तो संसार के प्रति, जो संसार है जो भौतिक है उसके प्रति आपको विरक्ति पैदा होगी ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रमशः, और भगवान, और इसके साथ साथ भगवान के तरफ, भगवान के रूप रंग गुण उनकी तरफ आपको आकर्षण पैदा होगा। सिर्फ इतना, साधना भक्ति से सिर्फ दो कार्य होंगे, संसार के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। और जब भगवान के प्रति आसक्ति होगी और आप तीव्रता से भगवान को इच्छा करोगे, हृदय में आपको इच्छा वो लानी पड़ेगी, अपने आप इच्छा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी साधना भक्ति से, ध्यान दीजिए, वो इच्छा आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप भौतिक कोई भी वस्तु पाने के लिए आप इच्छा करते हो उससे भी बढ़ करके आपको पता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नामना नामना नकारी बहुधा, फिर बाद में कह रहे हैं कि न धनम न धनम न जन्म न सुंदरीम। भगवान हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें एकमात्र आपकी कृपा चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका संग चाहिए। तो साधना से खाली दो स्थिति बनेगी, लेकिन दो स्थिति के बावजूद सूक्ष्म दर्शन में आपको 24 घंटे ये प्रयत्नशील होना पड़ेगा। ये लेबोरेटरी टेस्ट है, ये चेक पॉइंट है। आपको ये समझना होगा कि जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं उससे हमें 101% भगवान हमारे अंदर आत्मा में दिखने चाहिए। आप आंखें बंद कीजिए और आप देखिए कि क्या आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, नहीं होंगे। कारण क्या है? और एक सेकंड के अंदर होंगे। यहां पे भगवान कह रहे हैं कि इसके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, लेकिन कलयुग का दुर्भाग्य है ये कि कलयुग में जो है हमारी सूक्ष्म हमारी उस स्तर तक समझने की बुद्धि नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने हमें साधना दिया है कि साधना करो और अपनी और इस साधना से इस सूक्ष्म विषय को समझो। आपको इच्छा जो जन्म जन्मांतर न जाने कितने पूर्व काल की योनियों से इच्छाओं का पूरा जो है बोझ हम अपने अंदर बांध करके इस माइंड के अंदर लेके आए इस संसार में, उसको कैसे हम प्यूरिफाई करें शाश्वत तरीके से, उसको प्यूरिफाई करने का ये हमें मार्ग बताया कि साधना भक्ति करके हम जो है ये दो कार्य, हमें संसार और भौतिक चीजों से विरक्ति और भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हो। भगवान के प्रति आकर्षण यानी उन्हें हमें देखने की इच्छा प्रकट हो। जब तक आप किसी से मिलोगे नहीं तब तक आप उसके संपर्क में उसके पास जाने के लिए क्यों सोचोगे? भूल के भी नहीं सोचोगे आप, कितनी भी साधना करो कितनी भक्ति करो। तो साधना भक्ति का हमारे अंदर उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि वो हमें संसार से विरक्ति दिलाएगी क्रमशः और भगवान की तरफ आकर्षण को ले जाएगी। जब हम भगवान के रूप गुण लीला इन सब विषयों को बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे और उसमें हमारी आसक्ति को बढ़ाएंगे, उसके टेस्ट को बढ़ाएंगे। मैं बहुत छोटे से उदाहरण से इस बात को अब खत्म करना चाहूंगा कि बहुत चलिए हमारी धीरे धीरे अभी मान लीजिए भौतिक आसक्ति भौतिक चीजें खत्म हो गई और हम भगवान की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो गए, भगवान के दर्शन भी हमें हो रहे हैं और हमें इच्छा है कि अब भगवान का हमें संग प्राप्त हो। ऐसे में जो है अचानक हमारे पास में या गुरु महाराज के पास में एक फोन आता है कि हमारे बच्चे का नामकरण करना है। आप बताइए, आप खुद अपने चिंतन मनन करिए अपने दिमाग के अंदर कि ये हमारी एकनिष्ठ भक्ति कहाँ चली गई और तुरंत हम यहां पर जो है उस नामकरण के चक्कर में अपने गुरु महाराज से आशा करते हैं कि वो हमें हमारे पोते का परपोते का नामकरण रखें। इतनी सी बात से हम विचलित हो जाते हैं और हम कैसे दर्शन कर सकते भगवान का हृदय में? कभी नहीं कर सकते। तो इसका हमारी अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में कैसे परिणित करना है, भगवान की सेवा में एक निष्ठ होकर के कैसे लगना है एकाग्र होकर के, उसके लिए साधना हमें शास्त्र ने वैष्णव ने गुरु ने दिया है जिसके माध्यम से हमने प्राप्त किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हंस गुई प्रार्थना परम हंस की स्थिति में आपको जैसे मैंने ये दो तीन उदाहरण दिए कि आत्मा के स्तर पर जो है इसको अलग करके भोग और चीजों को देख करके आप देखो कि किस तरीके से हम इसमें अपनी चीजों को जो है मजबूत कर सकते हैं और भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने कथा को विराम देते हैं। आप सभी वैष्णव का धन्यवाद। और इस विषय में पर्सनल कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं और ये बिल्कुल लेबोरेटरी टेस्ट है और इस टेस्ट को खरा उतार करके अगर आप टेस्ट करके उसका रिजल्ट चाहते हैं तो आप जरूर इस पर डिस्कशन करिए, चिंतन करिए और इसके बारे में और कुछ जिज्ञासा हो तो आप मुझे पर्सनली मिलकर कर सकते हैं। हरे कृष्णा।